I sincerely welcome all of the assembled devotees to today's festival for the pleasure of Sri Radha Gopinath. My tens of millions of obeisances at the lotus feet of my Guru Maharaj, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, for giving this most treasured benediction of service to the Vaishnavas. Can someone translate for Narasimha Baba? In Bhagavad Gita, it is said that in this material world, especially in the age of Kali, what is irreligion is taken to be religion, and what is religion is taken to be irreligion. The example is also given of the banyan tree on the bank of the reservoir of water. What is actually the top of the banyan tree is the bottom of the reflection. And what is the bottom of the banyan tree appears to be the top within the reflection. So this material existence is the perverted reflection of the spiritual world, the supreme reality. Mayavadi philosophers, they claim that Brahma Satyam Jagan Mitya, that Brahma is truth and that Brahman is undifferentiated, and that anything that has qualities or differentiation is an illusion. In other words, it is not real. It does not actually exist. But as we were explaining this morning, Om Purnam Adha Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate, that the Absolute Truth is perfect and complete, and all emanations of the Absolute Truth, including this material energy, is also perfect and complete. Rasya Shaktir Vivadaiva Shuyate, that the Absolute Truth has multifarious differential energies that accomplish His will in all the spiritual and material worlds. There is the Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, and there is the Tatashta Shakti. We learn in the Shastras that Krishna expands Himself for His own pleasurable purposes. And the ultimate purpose of everything Krishna does is simply to facilitate love or praying. And the deep, intimate mellows of love called rasa. That is the whole purpose of existence, is simply love. Krishna expands Himself as Sri Baladev, who appears in Lord Chaitanya Mahaprabhu's Leela as Nityananda Prabhu. Who is Baladev, Nityananda Prabhu? The self-same personality as Shamsundar Krishna Himself. It is not that they are two different people, but at the same time they are eternally two different people. It is the same one Supreme Lord who is expanded for the sake of pleasure. Sri Nityananda Balaram is the Supreme Personality of Servitor Godhead. Srila Prabhupada explained it in this way. Krishna is Rasaraj, Rasabihari in Bombay, to be specific. Krishna is the supreme enjoyer. And Sri Baladev manifests unlimited facilities for Krishna to enjoy. He manifests the spiritual world of Goloka, Krishna Loka, Vaikuntha. The expansions of Baladev, Karuna Dakshai Vishnu, Garbo Dakshai Vishnu, Kshiro Dakshai Vishnu, are supervising the entire material existence. And from Baladev, unlimited living entities are manifested, who are all part and parcel of Krishna. However, just as Baladev is eternally in the role of the servant of Krishna, Nityananda Prabhu, it is his only identity as the servant, the supreme personality of servitor Godhead. Therefore, all the living entities that are expanding from them, all the jivatmas, are jivira swarupoi Krishna and nityadas. We are all eternal servants of the Lord. There is no other identity we will ever have. We are tatashta shakti emanating from that tattva, from that truth. Sri Barsana Swami Maharaj ki jai. Would you like to sit here? Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu, in his teachings, he made this principle the foundational precedent of knowledge in which everything else must develop, that we are eternally the servant of God. Achintya Bheda Bheda Tattva. We are simultaneously, inconceivably one with God in quality. We are all Sachit Ananda Vigraha because we are part and parcel. We are the Vibhinamsha of the Lord, the Supreme Personality of Godhead. But because we are infinitesimal parts, our eternal identity as servant. Krishna expands himself as Baladev Nityananda Prabhu, who is the supreme personality of servitor Godhead, and Krishna manifests us through Baladev, in which way we are by constitutional nature servants of the Lord. Why? In essence, the Vaishnava philosophy is the whole reality of existence is God loving himself. Krishna expands as Radharani. There is no difference. Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rashmat Ekat Manavaba. That Radha and Krishna are one, but they are eternally existing in two forms for the purpose of love. Baladev and Krishna are one, but they are manifesting two forms for the purpose of love. And all living entities, unlimited living entities, are all expansions of Krishna only for the sake of love, the exchange of love. This is the most beautiful reality. Therefore, this deep propensity for love is within the heart of every living being. In material existence, when our real pure ego is covered by the false evil, ahankar, then we identify with this body and with this mind, which are two material layers. And we try to search out the pleasure of love through that medium. Therefore, it is a perverted reflection of real love. It is when we view through the eyes of the false ego that everything we see is a perverted reflection of reality. A Mahatma, a Paramahamsa Thakur, a self-realized soul, even when he sees this material existence, he's seeing the banyan tree. He's not looking toward the reflection of the banyan tree. If you look down, you see the reflection. If you look up, you will see the tree. Material existence, everyone is looking down. The great souls are looking up. They are seeing the true reality. And their only purpose in this world is to remind us to look toward the truth, where there's real knowledge, where the real prospect of happiness can be discovered, and that is in Krishna. Krishna consciousness simply means to be conscious of Krishna in every situation. Everything is the property of Krishna. Everything is a spark of Krishna's splendor. Every living entity is a part and parcel, a child of Krishna. Everything is meant for Krishna's satisfaction. The fifth chapter of Bhagavad Gita, Krishna tells, Bhoktaram yajya tapasam sarva loka maheshwaram suhradam sarva bhutanam gyatva mam shanti mrishchati. Peace is not difficult to achieve. Simply we must understand these principles in truth. And we must practically apply these principles. That Krishna is the source of everything that exists and the proprietor of all. And everything is meant for the satisfaction of Krishna. And Krishna is the true, best, well-wishing benefactor of all living beings. That deep propensity to love is within everyone. Because actually it is that love that is the only eternal reality. But when we come under the influence of ahankar, the false ego, we are seeking the pleasure that that love brings us through our own selfish pursuits. But unfortunately, real love is ahoitiki apratihata. It is unconditional and unmotivated. It is the connection between the eternal soul and Bhagavan, Krishna. Recently I was in Udupi and I witnessed an incident which was quite instructive to me on two levels. We hear the philosophy, but when Krishna reveals through nature the confirmations of that knowledge, realization goes deeper in our hearts. It is said, paradukaduki, the quality of a great personality is that the pains of others is their own pains. As we make spiritual progress, it becomes intolerable to hear or see anyone suffering. This morning we cited Vasudev Dutt. He was willing to suffer hellish conditions perpetually so that others would be relieved of suffering. Amazing. Not only his own family members or friends or the people within his community, but even people he never met, even people of other nations, even people of other planets, even people of other species. He wanted to suffer for them so they could be happy. What an amazing extent of love of God. Our own beloved Guru Maharaj how many difficulties he underwent. Heart attack, seasickness, poverty, persecution, living in strange lands, so much risk going to America at 70 with no contacts, no money, no support. Why? He was going to a place where he didn't know anybody. He was willing to risk his life and endure the greatest difficulties for all living beings. That is the nature of a God-conscious person. And how living beings suffer is simply because their propensity to love is frustrated. That's really what suffering is about. Anandamayo Byashat. Krishna is always full of pleasure. And being part and parcel of Krishna, we are always seeking pleasure. That is the soul. And what is that pleasure? The pleasure of prem, the pleasure of love. That's what every living being is looking for. And suffering means when that pursuit of love is frustrated. When we get disease, the body suffers because we want to enjoy. And disease is an obstacle to our enjoyment, so therefore we suffer. But really, why does the soul want to enjoy through the body? Because it's looking for love, whether it knows it or not. So all suffering is simply because we have forgotten our love for God. It is the root of everything. Therefore, the greatest act of compassion is to reawaken people's love of God. Any other type of philanthropy, any other solution to the sufferings of the people of this world is only superficial. If you want to cure a disease, you must understand the root cause. The root cause is simply this, that we are all part and parcel of Krishna. Our nature is to love Krishna. And that love, due to ignorance, is frustrated. And Maya, the material energy, has unlimited methods of frustrating that propensity to find the pleasure of prem or love. So therefore, the greatest act of compassion, Bharata Bhumite Hoila Manusya Janmajar, Janma Sarata Kakara Karapara Upakar. Chaitanya Mahaprabhu gave this instruction to all people born of Bharat Bhumi. Understand who is Krishna. Realize who is Krishna. And do the para upakar. Do the supreme welfare work for all living beings by awakening their Krishna consciousness. That is, awaken that love and there's no more suffering. So when I was in Udupi, it's a mundane story. But I'm going to try to give it a spiritual purport. So please be patient. It's sentimental, but it can be instructive. Just a few weeks before I came to Udupi, Niranjan Swami Maharaj, Mathuranath Prabhu, who is here now, they saw a dog that was living right in front of our house. She had four baby dogs, puppies. Now, puppies are very nice looking. Even humans become very attracted to little puppies. When they grow old, they get different. But for that matter, humans are like that too. Little children are very sweet, but when they get old and they get all hairy and everything like that, they start getting all kinds of desires and egos. But little children are just sweet and playful and nice. Well, puppies are like that too. They just like to play, and they're very small, and they look very charming. So by the time I came, one of the puppies was run over by an automobile and died. The other one disappeared, probably also got run over by an automobile. Now, from the first day I came, I saw one of these puppies, about this big. And he was so active, so playful. And it was a dirt road in front of our house. And every day that little puppy was digging, 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 having such enjoyment, just digging, 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 digging a hole in the road. For about 2 hours every day, just... And you could see him smiling as he was digging. He was just happily digging. And he was working very hard. And the mother would come by and smile, "My child, my puppy is digging very nice." And just digging, 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 very much hard. And as the days were going on, he was working very hard digging this hole. Why he was digging the hole, I am not one to interpret, but he was digging this hole. 2 weeks went by almost. He was still digging the hole. By this time, the hole was quite deep. It was about this deep. And he just... So one day, I was coming up the road. I took a walk along the railway tracks. There was a temple of Lord Shiva, Lingeshwar Mahadev, that I would go to visit often, and through the forest. And I was coming back, and a car came down this road. It was a dead-end street where the car was at the end of the road and was coming and just passed me. And about 15 seconds later, I came to where that hole was, and the dog was laying in it. The dog dug that hole. It spent 2 weeks, hours a day, digging that hole, and then wanted to enjoy the fruits of his activities. When we work hard, do we not want to enjoy the fruits of our activities? So he wanted to enjoy it. And what's the basic ways of enjoying for the lower species and for humans as well, if they are not God conscious? Eating, sleeping, mating, and defending. Now, he was too young to mate, and he was eating already. So he was sleeping in that hole. He was so happily, blissfully sleeping in that hole that he worked so hard to dig. And then a car came and ran him over while he was in the hole. When I approached, he was laying in the hole. Thick blood was pouring from his nose and mouth. He was in utter pain. His limbs were just... desperately moved, shaking. And his poor mother was just at his side, watching her son dying. So I sat down next to that hole and was chanting japa so that the little puppy would hear the name of Krishna at the time of death. I was chanting. And the mother, very respectfully, she stood back about 6 feet so that I could be there while her puppy was dying. And was very respectful to just allow me to chant for her puppy. And the dog's back and front paws were just kicking like this and kicking like this. And then they got slower and slower and slower. And finally, very slow motion, they came down and stopped. Now, the mother was quiet the whole time, but as soon as the baby's legs stopped moving, which was the moment of death. The mother uncontrollably cried. It was not a sound you hear from a dog regularly. She was... As soon as that point of death came, she started weeping uncontrollably. And I looked over at her. Her eyes were glossed with tears, and tears were pouring from her eyes. A dog pouring from the eyes, just crying. So I continued chanting for some time. And then I walked away, and the mother came and was just weeping tears, weeping cries, and just smelling her little child. She couldn't leave it. She was grieving for hours and hours and hours. Until finally, about a half a day later, one of the neighbors picked the dog out of the hole and buried it somewhere else. And I can tell you, honestly, for the next week, the mother dog was just roaming and every few minutes just come back to the hole and sniff the hole and cry. Factually, for the next 2 weeks until I left, the mother kept coming back to that hole and crying. And smelling and remembering her child. Now, the ignorant people of this world who like to eat animals, they claim that the animal has no soul. But where the soul, wherever there is life, there is the soul. According to all the Shastra, and even from a scientific perspective, no one has ever discovered a material source of life. Life is spiritual. Wherever there is consciousness, there is the presence of the soul. And in the more developed species, we see how that soul so much has the same inclinations as a human being, except with less sophistication, maybe less intelligence. But I can tell you, I was watching that mother dog for weeks. When I saw that mother crying, tears and the sounds coming from her heart, I started crying. She loved her child in the same way any human mother would love her child. She was grieving as any human mother would grieve. Years ago, when I took care of cows, I saw a mother cow whose calf died. Many times I saw. And I saw tears flowing from her eyes, and she was crying. Motherly love. Motherly love is something that's very universal, unmotivated by material standards. It's the most unmotivated, unconditional type of love. So yes, Vasudev Dutt, Haridas Thakur, Srila Prabhupada, all the great acharyas, they feel compassion for the suffering of all living beings. They do not see anything in an impersonal way. And to the degree we love God, to that degree we have a spirit of compassion to greater and greater expansive realizations of all living beings. Srila Prabhupada explained that some people are compassionate to their family. If you expand that love more, then it may be to your relatives, or it may be to your community, or to your nation, or to humanity. But as your love expands, it goes to every living being. The greater the love means, the more it is expanding to more and more of Krishna's children. And when you actually love God, then you have love for every living entity, because you see everyone as part and parcel of Krishna. And the pain of any living being affects our heart. That is compassion. And if the great souls did not have that compassion, they would have no business coming to this world of birth and death. So yes, the soul is pleasure-seeking. The soul needs love. And the soul suffers when that love is frustrated. Even in the dogs. Something else instructive, which is the theme of the entire human society. There is a saying that you are digging your own grave. It is a fact. If that dog didn't work so hard to dig that hole, that dog would be playing in the fields today. That dog worked so hard to dig that hole for well over a week, hours and hours a day, digging, 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 digging. For what purpose? To enjoy it. And after the hole was dug and it went down to enjoy it, that very hole became the source of his ultimate suffering and death. The entire human society, more or less, today, is of the same consciousness as that dog. We are all endeavoring so hard to try to make some situation that we can enjoy. Is it not? Here in Mumbai, people are driving through traffic jams and riding in overcrowded trains and working in very difficult circumstances. Sometimes long hours, sometimes we're working under employers that have no compassion at all. They just want to exploit us for everything they can. People are working hard. We start our own business and we go into the format of competition. Dog-eat-dog world. But what are we doing? We're just digging a hole that we can enjoy. But we do not know that that very hole that we dig, time, the vehicle of time is going to come and take it all away. The fact is, every moment of human life is so precious. If we are wasting our time with material pursuits, we are losing those precious moments of human life to realize Krishna, to serve Krishna. So yes, on an international scale, we're developing technologies that are destroying the earth. We're developing with tremendous efforts. Man is spending billions of dollars and billions of man hours of work and woman hours of work to create chemicals. That's breaking down the ozone, that's polluting the atmosphere, polluting the earth, polluting the water. And it's causing cancer everywhere, epidemic of cancer due to unnatural living. Yes? We're building huge bombs, which eventually, no matter how many treaties, in the history of the world, man has never made weapons that they don't use. Hare Krishna. It's a completely theoretical misconception that you could build bombs and make agreements to never drop them on each other. It's just a matter of time. Even if we make the agreement, who's to say that the next generation is going to not break the agreement? Throughout human history, people change. They change their policies. Yes, so much effort building these huge schools, massive universities. But without giving people the proper ethics and the proper spiritual understanding of life, their knowledge is going to cause destruction. And that's exactly what's happening. Yes, this whole human society that we're living in worldwide is very accurately symbolized by that puppy dog. He worked so hard to make an arrangement for his happiness, and the very arrangement he made was the cause of his suffering and death. Why? Because of ignorance. Sri Krishna Chaitanya, what is that? Bande Sri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodado Gododaye Pushpabanto Chitro Sando Tamonado. That Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they have appeared like the sun and the moon on the horizon of Gododesh to give light in this world of darkness and to bestow the highest benedictions upon all. The greatest problem in this world is ignorance. People are working so hard not knowing that they're undermining their very purpose of life. Srila Prabhupada wanted us to distribute his books profusely. He wanted us to be very, very enthusiastic and determined to create so many cultural ways to attract people. Why? Because everywhere you go, every house you go, every shop you go, in every continent, all you see is ignorant little puppies going just digging their holes. And a person who knows the truth understands what's happening. Their efforts are undermining their real purpose, which is to experience the real pleasure of love. So yes, this is the greatest welfare, the greatest act of love for humanity, to nourish people's hearts with transcendental knowledge. And the culmination of all knowledge in this age of Kali is very simple. That the Supreme Lord has descended in a sound vibration that will awaken the prospect of our true aspiration. Love of God. Golokera Premadana Harinam Sankirtan. From the spiritual world, Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu, they brought with them the Hare Krishna Maha Mantra. And the great personalities, they have given the world the names of the Lord. Srila Prabhupada, he took the most complex and difficult philosophical principles and put them in such an easy package to understand and realize. In one sentence, chant Hare Krishna and be happy. because the name of God is none different than the Lord. Sri Radharani, Shyam Sundar have descended within these sound vibrations. In the presence of the Supreme Lord, Sri Radha Gopinath, our love naturally awakens. It is the natural process. There's nothing artificial. Other yogic processes are artificial ways of trying to control the mind, artificial ways of trying to control the senses. But this Nam Sankirtan is most natural. Nam Sankirtan is, we're inviting the presence of Radharani and Krishna within our hearts. And when they are present there, and we have humility and respect, then naturally our love awakens for them. And as our love awakens for Radharani and Krishna, our mind and our senses simply taste the nectar of serving them. Vishayava nivaratante niraharasya dehina rasya varajam rasopyasya param drishtha nivartate. It's very difficult to control the mind and senses. Yatatohya pikonteya purushasya vipaschata indriyani pramathini haranti matrashavam mana. The senses are so strong and impetuous, that even a person of discrimination has a difficult time to control it. But Krishna tells us, when we experience a higher taste, naturally our mind and senses, as love of God begins to awaken in our heart, our mind and our senses become addicted to serving the Lord, to pleasing the Lord. Yamunacharya, when he was a king in his youth, he enjoyed all types of sense gratification. But when he tasted the sweetness of bhakti, he offered this beautiful prayer. Now that I have tasted this sweetness of devotional service to the Lord, every time I think of sense gratification, my lips curl in distaste and I spit at the thought. That is a natural process. Therefore, there is no more merciful benediction for all humanity than the Sankirtan of the holy name. Is there a children's program today after? So today there is a Bal Utsav, a children's program, so we do have to end a little early. But I would like to invite our special guests to speak a little briefly, because children's have a program. We'd like to begin by asking Panditji Maharaj, from Sri Gabravan, Chikshali, Varsana, to speak and illuminate us with his wonderful realizations of bhakti.
Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Kehna to kuch aur cha raha tha, लेकिन महाराज ने जब कुत्ते का उदाहरण दिया तो कुछ दिमाग बदल गया। महाराज पृथ्वी जी के वंश परंपरा में बरिषद नाम के राजा हुए, जिन्होंने बहुत से यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुशाओं से ढक दिया, इसलिए उनका नाम एक प्राचीन बरही कहा गया। उनका मन कर्म कांड के कार्यों में बहुत अधिक रहा करता था, भक्ति की ओर उनका झुकाव नहीं था। नारद जी एक बार आए और उनसे बोले कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? सच्चा कल्याण है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो, इसी को कल्याण कहते हैं। और इन यज्ञ आदि के द्वारा सच्चा कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त हो सकते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर उनको यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्योंकि क्षीणे पुण्य ते मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आना जरूरी है। तो बोले इन चीजों से सच्चा कल्याण नहीं होता है। नारद जी ने उनके लिए एक कथा सुनाई, बोले राजन, बहुत पहले की बात है, एक पुरंजन नाम के राजा थे और उनका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात, जिसकी गतिविधियों को कोई जान नहीं सकता था। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, साथ साथ रहा करते थे। एक बार राजा पुरंजन के मन में भोग इच्छा जागृत हुई, अपनी भोग लिप्सा को पूर्ण करने के उद्देश्य से वो बहुत से स्थानों में गया, लेकिन उसकी भोग लिप्सा शांत नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई। अंत में उसने एक नौ दरवाजे वाली पुरी देखी, उसके अंदर एक सुंदर स्त्री रहती थी। वो राजा उसके पास में गए, उनसे परिचय पूछा, अजी तुम कौन हो, तुम्हारे बड़े सुंदर कमल कैसे नेत्र हैं, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो? उस की एक विशेषता थी, उस स्त्री की रक्षा के लिए पांच फन वाला सर्प वहां पर रहता था, ग्यारह सेवक हर समय उसकी सेवा में रहते थे। उन्होंने परिचय पूछा, ये पांच फन वाला सर्प कौन है और ये जो ग्यारह सेवक हैं इनका क्या परिचय है? फिर कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मुझे न तो मेरे माता पिता का नाम मालूम है और ना ही मैं अपना कुछ गोत्र जानती हूं। फिर एक प्रस्ताव रखा, अच्छा तुम हमारे साथ में ब्याह कर लोगी? उस स्त्री ने कहा कि ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात होगी यदि आप जैसा पति हमको प्राप्त हो जाए। बड़े प्रसन्न हुए, उनके साथ में विवाह कर लिया और उसका नाम रखा गया पुरंजनी। वो राजा पुरंजन हुए, उनकी रानी पुरंजनी हुई। धीरे धीरे राजा पुरंजन अपनी रानी के प्रेम पाश में ऐसे बंध गए कि जब वो कुछ खाए तो वो भी खाने लगे, वो पिए तो ये भी पीने लगे, वो हंसे तो ये हंसने लगे, रोए तो रोने लग जाए, जब वो दौड़ने लगे तो ये भी दौड़ने लगे, अब वो सो जाए तो ये भी सो जाए। ऐसे उसके कीड़ा मृग बन गए। एक बार राजा पुरंजन अपने पूर्व अभ्यास के अनुसार शिकार खेलने के लिए गए, अपनी रानी से बिना पूछे चले गए। जब वो लौट करके आए, रानी ने देखा, अरे मेरे बिना पूछे चले गए, गुस्सा होकर के अनशन पार्टी लेके पड़ गई। राजा जब लौट करके आए, नहा धोकर के अच्छे वस्त्र पहन के अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया, वहां रानी को नहीं देखा, अपनी नौकरानी से पूछा, तुम्हारी मालकिन कहां है? उन्होंने कहा कि कारण तो हमको मालूम है नहीं, वो तो बिना बिछोना बिछाए हुए और जमीन पर ही पड़ी हुई है। उन्होंने जाकर के देखा तो वैसे ही पड़ी हुई थी। बड़े मृदुभाषी थे, मीठा बोल करके बहुत प्रेम से बात की, सांत्वना दी और उनको प्रसन्न कर लिया। यहां तक कि उसके पांव भी पकड़ लिए कि तुम हमसे क्यों नाराज हो रही हो, हम तुम्हारी नाराजगी नहीं देख सकते। खुश कर लिया। अब दोनों साथ साथ रहने लगे, विहार करने लगे। 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई इनके। एक बार चंडीवेग गंधर्व देश के राजा चंडीवेग ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। इनकी सेना में 720 सैनिक थे, 360 पुरुष जाति के, 360 स्त्री जाति के। चढ़ाई कर दी। एक कन्या थी जरा नाम की, वो सबसे विवाह करना चाहती थी लेकिन उससे कोई विवाह करना ही नहीं चाहता था, बड़ी विचित्र कन्या थी। अब जब राजा चंडीवेग ने चढ़ाई कर दी, चारों ओर से ये राजा घेराव में आ गए। अब अंत में इनको अपनी बहुरानी की याद आई कि हमारी पुंजनी का क्या होगा। होनहार की बात, उसकी याद में इनका शरीर छूट गया। शास्त्र में लिखा है अंत काले यथा मति तथा गति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। तो परिणाम ये हुआ, ये विदर्भ देश के राजा के यहां पर वैदर्भी नाम की कन्या बने। विदर्भ देश के राजा ने मन में विचार किया कि मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करूंगा जो दिग्विजयी हो और इसके साथ साथ धर्मात्मा भी हो। उस समय राजा मल्यध्वज थे, उन्होंने अपने बाहुबल से सब कुछ जीत लिया था, बड़े धर्मात्मा भी थे। जब इनकी कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह राजा मल्यध्वज के साथ में कर दिया गया। आनंद पूर्वक कुछ दिन गृहस्थ में रहे और धर्मात्मा तो थे ही, अंत में इनको वैराग्य हुआ, राजपाट छोड़ करके वन में चले गए तप करने के लिए। ये रानी भी उनके साथ में गई और सेवा शुश्रूषा करती रही, तपों में जीवन व्यतीत करते रहे। अंत में एक समय ऐसा आया कि राजा मल्यध्वज का शरीर पूरा हो गया। अब ये विलाप करने लगी, रोने लगी कि हमारे पतिदेव गुजर गए। इसी बीच में एक ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा भाई तुम क्यों रो रही हो? बताया कि हमारे पति गुजर गए, हम विधवा हो गई है, विडो हो गई है, इसलिए हम रो रही। ब्राह्मण देवता बड़े ज्ञान संपन्न थे, भूत भविष्य की जानने वाले थे। उन्होंने जल के छींटा देकर मंत्र शक्ति से उनको ज्ञान कराया कि ये तुम्हारे पतिदेव नहीं है, तुम इनकी पत्नी भी नहीं हो, तुम तो हमारे मित्र हो। अब उनको ये ज्ञान हुआ कि वास्तव में तो हमारे मित्र हैं। तो ये जो आपको अभी कथा सुनाई थी, देखने में तो लग रहा है कि एक राजा रानी की कथा है, लेकिन जैसे महाराज ने कुत्ते के पिल्ले के माध्यम से एक बहुत बड़ा ज्ञान इन्होंने दिया, तो इसी तरह से ये ज्ञान इस कथा के अंदर भरा हुआ है। ये राजा रानी की कहानी नहीं है, क्योंकि भागवत का प्रसंग है। अगर ये राजा रानी की कहानी होती तो सुखदेव जी महाराज जो ब्रह्म में लीन रहने वाले हैं वो इन लौकिक कथाओं का वर्णन करते ही नहीं। ये कथा है वस्तुतः तो देखा जाए हमारे तुम्हारे जीवन की। अब समझो थोड़ा सा, ये राजा पुरंजन कौन है? ये राजा पुरंजन है जीव। इनके जो मित्र थे अविज्ञात, जिनकी गतिविधियों को जाना नहीं जा सकता था, वो है ईश्वर। जीव और ईश्वर अनादि काल से मित्र रहे हैं, साथ साथ रहे हैं। लेकिन जब इस जीव के मन में भोग इच्छा जागृत हुई, अपनी भोग लिप्सा को पूर्ण करने के उद्देश्य से ये अनेकों स्थानों में गया, यानी अनेकों योनियों में इसने जन्म लिया। कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी ऊंट बना, कभी बिलाव बना, न जाने कितनी योनियों में जन्म लेता रहा, लेकिन इसकी भोग लिप्सा कभी पूर्ण नहीं हुई। अंत में इसने एक नौ दरवाजे वाली पुरी देखी। ये नौ दरवाजे वाली पुरी क्या है? यह है मानव शरीर, चाहे वो स्त्री का शरीर हो या वो पुरुष का शरीर हो। देखो ये नौ छिद्र हैं हर शरीर के अंदर, दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुंह और दो नीचे मलमूत्र त्यागने के। इस तरह से नौ छिद्र हर मानव शरीर के अंदर होते हैं, स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो। इसमें एक जो सुंदर स्त्री रहती थी वो स्त्री है बुद्धि रूपी स्त्री, जिसकी सेवा में ये 11 सेवक रहा करते थे। ये 11 सेवक कौन है? ये 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन। ये बुद्धि रूपी स्त्री के हर समय हुक्म में रहते हैं। जैसे बताया था, आप लोग हंस रहे थे उस समय कि भाई जब ये खाने लगे तो ये भी खाने लगते, जब ये दौड़ने लगे तो ये भी दौड़ने लगते, ये हंसने लगे तो ये भी हंसने लगते। यानी बुद्धि रूपी स्त्री जैसा हुक्म करती है, इंद्रियां और मन उसका अनुकरण करते हैं। बुद्धि रूपी स्त्री ने कहा उधर देखो तो दृष्टि उधर चली जाती है, हाथ ऊपर खड़ा करो तो हाथ ऊपर होने लगता है। यानी जैसे यह बुद्धि रूपी स्त्री कहती है इंद्रियां और मन वैसा ही करते हैं। 5 फन वाला सर्प जो इसकी रक्षा में रहता था, ये कौन है? ये है 5 प्राण वायु। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण वायु जब तक शरीर के अंदर मौजूद है तभी तक उसका अस्तित्व है, वो जीवित है। ये 5 प्राण वायु निकल जाने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यानी ये 5 फन वाला सर्प यही 5 प्राण वायु के रूप में है जो उस जीव की रक्षा करता है। एक जरा नाम की जो कन्या थी, जो सबसे विवाह करना चाहती थी, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। जरा कहते हैं बुढ़ापा, ओल्ड एज। ये ओल्ड एज सबको आना चाहती है लेकिन इसको कोई राजी नहीं है, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई इसको नहीं चाहता है। गंधर्व देश का राजा चंडीवेग था, जिसकी सेना में 720 सैनिक थे। ये चंडीवेग कौन है? यह है काल वर्ष। एक वर्ष के अंदर 360 दिन और 360 रात्रियां होती हैं। दिन हैं ये पुरुष जाति के सैनिक हैं, रात्रियां स्त्री जाति की सैनिक हैं। किसी का शरीर दिन में पूरा होता है तो समझ लो पुरुष जाति के सैनिकों ने समाप्त कर दिया, और किसी का शरीर रात्रि में पूरा होता है तो समझ लो स्त्री जाति के सैनिकों ने उसको समाप्त कर दिया। ये हर समय उसकी आयु का छेदन करते रहते हैं। ये जो 1100 पुत्र और 110 कन्याओं के विषय में जो बताया था, ये 11 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, इनकी अनेकों प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये उनके पुत्र और पुत्रियों के रूप में हैं। अब आगे बताया कि देखो सच्चा ज्ञान, नारद जी ने कहा कि इससे यज्ञ आदि के द्वारा नहीं, ये ज्ञान सच्चा भक्ति से होता है। भक्ति के आने पर ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही ये हो जाते हैं। मूल है भक्ति, अगर भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। ये भक्ति कैसे आए? नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, सो अचिरा देव राजर्षे स्याद अच्युत कथाश्रय। ये भक्ति जो है अच्युत भगवान श्री कृष्ण की कथा के आश्रित है। संतों के द्वारा जितना आप कथा श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं को सुनेंगे, गोपीनाथ जी के सन्निधि में उनका जो चिंतन करेंगे, बोले इसी से भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। भक्ति की प्राप्ति बिना संतों की कृपा के संभव नहीं है। संसार की अन्य वस्तुएं आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कृष्ण की प्राप्ति का तो एक ही उपाय है, वह संतों की सन्निधि। जब तक संतों की चरण रज को आप अपने मस्तक से नहीं लगाएंगे तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये रहस्य जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को कहा, रहुगणई ये तत्तपसा न याति न चेज्जया। राजन ये कृष्ण की प्राप्ति कोई तपस्या के बल से करना चाहे तो संभव नहीं है, यज्ञ आदि के द्वारा करना चाहे संभव नहीं है। निर्वपराद ग्रहाद्वा, बोले अन्नदान करना, ये तो अन्नदानम परम दानम कहा गया है। अन्नदान करने से आपके यहां पर अन्न की कभी कमी नहीं रहेगी लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे। और बोले घरवार छोड़ के साधु बन जाओ, गृहस्थ बाधक है, निर्वपणाद ग्रहादवा, भले तुम घर छोड़ करके भी चले जाओगे, साधु बनकर के रहोगे और वहां पर भी वही चिलम पी रहे हैं अथवा इस तरह से लगा रहे हैं, तो ऐसे साधु बनने से भी लाभ नहीं है। गृहस्थ में यदि कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं तो वह गृहस्थ साधु से ज्यादा अच्छा है। अगर हमारे में मनमानापन आ गया साधु बनकर के, तो साधु से वो गृहस्थ ज्यादा अच्छा जो कृष्ण चिंतन कर रहा है, प्रभु का गुणगान कर रहा है, साधु संतों की सेवा करता है। न छंदसा, बोले वेद पढ़ना, वेद तो भगवान का स्वरूप कहा गया है, वेद पढ़ने से तुम्हारी तेज वृद्धि हो जाएगी, ललाट चमकने लगेगा, जो कुछ कहोगे वाणी सत्य हो जाएगी, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे। न छंदसा न जलाग्नि सूर्य ही, जग लग्नि सूर्य की उपासना करने से भी कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। तो कृष्ण की प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले एक उपाय बताया है, अगर उस उपाय को तुमने कर लिया तो कृष्ण मिल जाएंगे, और यदि उस उपाय को नहीं किया, सारे उपाय कर लिए, तो कृष्ण ही मिलेंगे। वो उपाय क्या है? बिना महद पाद रजो अभिषेकम, महापुरुषों की चरण रज का जब तक आप अभिषेक नहीं करेंगे, जब तक उस चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे, संतों की सन्निधि में नहीं जाएंगे, संतों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो ऐसे सच्चे संतों का आश्रय ले लो, उनकी आज्ञा का पालन करो, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो, तभी जाकर के कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। बिना इसके कृष्ण की प्राप्ति संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो न्योछावर, वो सेक्रीफाइस ऐसा होना चाहिए जो अपनी सत्ता को मिटाने वाला हो। हम लोग भगवान को ठगना चाहते हैं, कहते हैं हमें तो महाराज कृपा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृपा चाहिए, लेकिन कृपा का तो हम बहाना कहते हैं, हमें चाहना है धन संपत्ति की, चाहना है कि हमारे बच्चे सुखी रहें, चाहना है हमारा बिजनेस बढ़ता जाए, कृष्ण की चाहना किसी को नहीं है। क्यों? कि कृष्ण की चाहना वालों की जो योग्यता होती है, वो योग्यता हमारे अंदर नहीं है। उस कृपा की योग्यता क्या है समझो, कृपा कृपा सब को कहें, कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। कृपा कहते तो सब हैं, लेकिन कृपा की योग्यता नहीं है। कृपा की योग्यता वो होती है जिसके अंदर ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना किंतु परंतु के जिसके अंदर आज्ञा पालन है, वही वास्तव में कृपा का अधिकारी है। अगर हमारे अंदर गुरुजनों के प्रति ये बिना किंतु परंतु के आज्ञा पालन है, तब तो वास्तव में हम कृपा के अधिकारी हैं, बिना इसके संभव नहीं है। जो कुछ महाराज ने बताया उसको हम दृढ़ता के साथ में ग्रहण करें, क्योंकि यदि वो दृढ़ता, वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो बिना उसके ज्ञान हमारा डिमिनिश हो जाता है, चला जाता है। भागवत ने कहा है अदृढ़म तु हतम ज्ञानम, बिना दृढ़ता स्टेबिलिटी के ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, अगर हम जो भी कुछ सुन रहे हैं कॉशस होकर के नहीं सुन रहे हैं, चेतनता से नहीं सुन रहे हैं, सावधानी से नहीं सुन रहे हैं, तो वो सुनने का फल चला जाता है। सावधानी से सुनने का भाव है, जो कुछ हमने सुना है वो हमारी क्रिया में आना चाहिए, अगर क्रिया में नहीं आया तो समझ लो कि हमने ठीक से सुना नहीं। और संदिग्धम हतो मंत्रो, अगर किसी मंत्र में जो गुरुदेव ने हमको बताया है उसमें कहीं संदेह उत्पन्न हो गया, तो बोले मंत्र का फल चला गया। एक व्यक्ति थे तो बेपढ़े लिखे, गुरुजी के पास में गए, संत जी के पास में, बोले महाराज हमको मंत्र दे दो, मंत्र दे दो हमको। गुरुजी बोले कि भाई मंत्र ऐसे ही थोड़े दिया जाता है, एक साल सेवा करो जब उसके बाद देंगे। तो उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की। एक साल के बाद कहा गुरुजी अब तो मंत्र दे दो। बोले अच्छा तुम स्नान करके आओ, उसके बाद में मंत्र देंगे। स्नान करके आए, गुरुजी के पास बैठ गए, गुरुजी अब मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने उनके कान में कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुनकर के वो एकदम बिगड़ गया, गुरुजी के ऊपर बरस गया। अब यहां सब लोग बैठे हुए हैं इसलिए गाली देकर के कहना तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे इसको तो मैं पहले से ही जानता था, मेरे को तो ठग लिया तुमने, इस मंत्र को तो बहुत पहले से जानता था मैं। हम तो समझ रहे कोई नया मंत्र बताएंगे रिद्धि सिद्धि देने वाला जिससे कुछ और वो हो। गुरुजी समझ गए, जानकार थे, भूत भविष्य के जाता थे। तो उन्होंने एक हीरा दिया और उससे अपने चेले से कहा कि तुम इसका बाजार में भाव लेकर के आओ लेकिन बेचना मत। गया वो पहले एक साग बेचने वाली के पास में गया, मूली गाजर बेच रही थी साग सब्जी। बोले देख तू इसको ले लेगी? बोले हाँ। क्या देगी? बोले एक किलो मूली ले जाना। लेके चलाया, फिर गया, फिर एक और बड़ी दुकान पे गया, कपड़े वाले के पास गया। उसने कहा भाई देखने में चमकीला लग रहा है। बोले ले लो। हाँ क्या दोगे? बोले एक कमीज के लिए कपड़ा ले जाना। ले आया, बेचना नहीं था, भाव देखना था। होते होते सुनार के पास में पहुंच गया। उसने कहा भाई देखने में तो बड़ा चमकना लग रहा है, चमकीला है, अंगूठी में लगा लिया जाएगा। बोले क्या दोगे इसका? बोले एक अंगूठी दे देंगे सोने की। बोले अरे। फिर आगे गया एक जौहरी के पास में। जौहरी ने कहा भाई तुमको जितना चाहिए सो ले लो, 1,00,000 दे देंगे इसका। अब तो उसका बड़ा एकदम हुआ कि इतना इसका दाम लग रहा है। संयोग से वो राज जौहरी के पास चला गया, बेचा नहीं लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। राज जौहरी ने कहा जितना चाहिए उतना इसका ले जाओ उनसे। उसने राजा से कहा ऐसा हीरा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। तो गया गुरुजी के पास, गुरुजी अच्छे दाम लग रहे हैं इसका, कहा है कि पूरा राज्य ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन वो तो बेचना नहीं था। तब उनको ये ज्ञान हुआ, तब बताया कि देखो ये वही हीरा है जिसका कि एक मालिन जो थी 1 किलो मूली दे रही थी। यानी जिसने जिसको जैसा जाना, जौहरी की हीरे की परख जौहरी जानता है, नाम की परख भक्त लोग ही समझते हैं, नाम की महिमा हर कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से उनको बताया कि ये जो नाम है ये भी हीरे की तरह से, हर कोई व्यक्ति इसकी कीमत नहीं समझता है। हम लोग नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, नाम की महिमा है। एक नाम भी भगवान का ले लिया जाए तो उसे भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन आप सोचेंगे हम तो बहुत सी माला रोजाना करते हैं, हजारों नाम लेते हैं, फिर चमत्कार क्यों नहीं आता? देखो हम लोग नामापराध करते हैं। अगर नामापराध न किया जाए तो एक भगवान नाम लेने से ही सब कुछ मिल जाता है। एक भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है। कबीरदास जी ने एक भगवान नाम के प्रभाव से बालक को जीवित कर दिया था, राम राम कह करके। ऐसी कथा तुलसीदास जी के जीवन में आती है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान नाम का चमत्कार तब सामने आता है जब हम नामापराध न करें, संतों की वाणी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया, समझ लो नामापराध हो गया। भक्त आए हुए हैं, भक्तों को देख करके हमारे मन में आह्लाद प्रसन्नता नहीं हुई, उनका यथोचित सम्मान नहीं किया, नामापराध हो गया। नाम की महिमा जो भी बताई गई है इसके प्रति यदि सोचने लगे, बढ़ा चढ़ा के कहा है, नामापराध हो गया। इस तरह से बहुत से नामापराध हैं। भगवत विग्रह के सामने हम क्रोध कर रहे हैं, झड़क रहे हैं एक दूसरे से, नामापराध हो गया। भगवत विग्रह के आगे हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, नामापराध हो गया। अगर हम नामापराध से बच जाएंगे तो एक नाम ही भगवान से मिला देगा। हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और ये सब चीजें कब मिलेंगी? संतों की शरणागति से। भगवान नाम की महिमा देखिए। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नल। अज्ञान से अनजाने में अथवा जानबूझ करके कोई अग्नि को छू लेता है तो अग्नि का गुण है दाहकत्व, तो जलाने का। अग्नि उसको जला देती है, ईंधन को जला देती है। अनजाने में छुएंगे, स्पर्श होगा तो भी जला देगी। इसी तरह से संकीर्तितम अघम पुंसो, मनुष्य भगवान नाम का जो कीर्तन करता है उससे उत्पन्न ये नाम रूपी अग्नि से ये पाप रूपी ईंधन जल करके भस्म हो जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम घृणम अशेषाग हरम विदुह। संकेत में, इशारे में भगवान का नाम ले लिया जाए, हंसी मजाक में, खिसलते फिसलते हुए अथवा किसी को पुकार रहे हैं भगवान नाम लिया जाए। वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नाम ग्रहण करने से सब प्रकार के पाप उससे नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, देखो नाम की कितनी महिमा है। चार डाकू थे, साधु का वेश बना करके रहा करते थे। एक जंगल में जाने के लिए गहरा सा नाला था, उसको पार करना होता था। उन डाकुओं ने लूटने की योजना बनाई, जैसे कोई निकल के जाता था चारों अलग अलग जगह पे खड़े रहते, इशारे बना रखे थे। एक ने कहा श्री हरि, अगले वाले ने समझ लिया हरी झंडी लाइन सफा, लाइन क्लियर है, कोई खतरे की बात नहीं है। बोले दामोदर, दाम है उधर में जिसके, यानी अच्छी सी रकम लेके आ रहा है, समझ गए। फिर आगे देखा जाए, उसने कह दिया श्री हरि, लाइन क्लियर है, कोई बात नहीं है। अगले ने इशारा किया वासुदेव, देखने में तो लग रहा है भगवान नाम ले रहा है, कोई जान ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि वासुदेव पढ़न दो इसके ऊपर, कोई बचाने का नहीं है। और इस तरह से लूट लिया करते थे। अब जब इस तरह की बात हुई, दामोदर श्री हरि वासुदेव, एकदम जो है धरती फट गई उनके पाप के कारण से, ले उसमें वो समा गए। लेकिन भगवान नाम लेने के कारण से उनका कल्याण हुआ, भगवत धाम को चले गए। कहने का भाव यह है कि भगवान नाम लेने से हर प्रकार से कल्याण होता है। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दस हु। भाव से लिया जाए उसका तो ठिकाना ही क्या है, दुर्भाव में ले रहे हैं। कैसे भी लिया जाए भगवान नाम, उससे हमेशा कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब आपको थोड़ा सा ब्रज के विषय में बताएंगे। ये ब्रज रस की प्राप्ति भाई तब होती है जबकि पूर्ण डेडिकेशन का, समर्पण का राधानाथ महाराज की तरह से भाव हो, ब्रज के प्रति ऐसा अनुराग हो। अभी हम गए थे महाराज के कमरे में, गोबर से लिपा हुआ है, बैठने के लिए चटाई है, यानी ये समझिए उपभोग की सामग्री उपस्थित होने पर यदि अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए उसका उपभोग न किया जाए, यह है वास्तव में सच्चा वैराग्य। वैराग्य का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हमारे पास कोई कुछ कपड़े लत्ते नहीं है, निष्किंचन उसको नहीं कहते, निष्किंचन का मतलब होता है नास्ति किंचित धनम कृष्णात परम यस्य, जिसके पास में कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा धन न हो उसको निष्किंचन कहा जाता है। हम लोग मोटी बुद्धि से समझते हैं जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं हो, जो इतना दलिद्री हो उसको निष्किंचन समझते हैं, वो निष्किंचन नहीं है। एक राजा निष्किंचन हो सकता है, एक धनाढ्य व्यक्ति निष्किंचन हो सकता है, गरीब के अंदर जिसके अंदर बहुत सी कामनाएं भरी हुई हैं उसको हम बाह्य वेशभूषा से निष्किंचन नहीं कहेंगे। भोग की सामग्री उपस्थित हो, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन उनका उपभोग न किया जाए, यह है वास्तव में सच्चा निष्किंचन होना। ऐसे थे महाराज अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों रानियां उनकी सेवा में थीं, लेकिन अपना स्वयं कार्य अपने हाथ से करते थे, चक्की चलाते थे, प्रभु का गुणगान करते रहते, रसोई अपने हाथ से बनाते थे, कुएं से पानी अपने हाथ से लाते और झाड़ू अपने हाथ से लगाते, बर्तन अपने हाथ से साफ करते, अपने हाथ से जो सेवा की जाती है प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। नौकर चाकर के द्वारा हम जो करा देते हैं वो समझ लो वो केवल काम है, वर्क है, लेकिन उसको सेवा नहीं कहा जाएगा। सेवा तो तब होती है जब हम अपने हाथ से स्वयं करते हैं, भावना के साथ में करते हैं। और ब्रज रस की प्राप्ति तो भाई तभी होती है जब ऐसे सैक्रिफाइस के, ऐसे समर्पण के जब भाव होते हैं, तभी जाकर के ब्रज रस मिलता है। वो इतना सहज नहीं है, ये वो रस है। जहां हम लोग रहते हैं उस जगह का नाम है गहवर वन, बरसाना जो श्री राधा रानी का निवास स्थल है, गहवर वन है, जहां श्री राधा रानी ने इस वन की स्वयं स्थापना की है, स्वयं बनाया है। तत्र नाम गहवर कम वनम द्वंद मनोहरम श्री राधया निर्मितम काम केली कीर्तम, यानी कीड़ा विलास के लिए श्री राधा रानी के द्वारा इस वन को स्वयं बनाया गया है, इतना दिव्य वन है। इस वन के वास के लिए ब्रह्मा शिव आदि लालायित रहते हैं। गहवर वन के वास को आस करें शिव शेष, और ताती महिमा को कहे जहां श्याम धरें सखी वेश। ये वो दिव्य वन है जहां के लिए ब्रह्मा शिव एक रात्रि रहने के लिए लालायित रहते हैं, एक क्षण का वास हमको मिल जाए। दादानाथ महाराज कितने भाग्यशाली हैं, सन 71 में जब कोई जानता नहीं था तब से गहवर वन में हमारे मान मंदिर पर जब वो खंडहर अवस्था में था उस समय वहां पर ये रहते थे और पानी की भरी बाल्टी लेके चढ़ जाते थे इतनी ऊंचाई सीढ़ियों पर। इनका शुरू से ही तपस्वी जीवन रहा है। हमारी यात्रा थी 88 में हुई थी पहली यात्रा, उस यात्रा में गए थे, पांव में कांटे लग रहे, खून निकल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं पैदल। वास्तव में जो इतना त्याग करता है, कष्टों को सहता है, उसको ये ब्रजरस की प्राप्ति होती है। ये ब्रजरस सहज नहीं है। एक ब्रज रेणु कापे चिंता मणि वारि डारो, सब कुछ न्योछावर कर दिया जाए। वारि डारो विश्व सेवा कुंज के बिहार पे, लतान की पतान पे की कल्प तरु वार डारो, वैकुंठ हूं वार डारो कालिंदी की धार पे, ब्रज की पनिहारिन पे रति सती हूं वार डारो और रंभा हूं कु वार डारो गोपन के द्वार पे। कहत अभय राम जानत एक श्री राधेजू और सब देवन को वार डारो नंद के कुमार पे। बोलो नंद के लाला की। हम लोग आपसे कहेंगे राधानाथ महाराज की जैसे यहां भले ही रहते हैं या कभी अमेरिका में रहते हैं, कभी किसी देश में जाते हैं, लेकिन इनकी आत्मा ब्रज में रहती है। देखो दूरी जो होती है वो डिस्टेंस की नहीं होती है। डिस्टेंस की दूरी तो हम मूर्खों की दृष्टि में रहती है, दूरी होती है वास्तव में मन की। क्योंकि कुमुदिनी का आप नाम ने सुना होगा, जल में बसे कुमोदनी, चंद्र बसे आकाश। चंद्रमा कितनी दूर है? आकाश में, और ये नीचे जल में है। जल में बसे कुमोदनी, चंद्र बसे आकाश, और जो जाके हृदय रहे सो ही ताके पास। जो जिसके पास में है, हृदय में जो चीज विराजमान है, वास्तव में वही उसके पास में हर समय। ये रालानाथ महाराज भले विदेश में रहे या कहीं भी रहे, क्योंकि ब्रज में इनका मन है, इसलिए ब्रज हर समय बाहर रहने पर भी ब्रज इनके पास में। ब्रज की उपासना ये बड़ी कठिन उपासना है, ये पूर्ण समर्पण का जहां भाव है, जैसे कि गोपियों का रहा, उस पूर्ण समर्पण के भाव के कारण ही गोपियां कृष्ण की भी आराध्या बन गई। ब्रह्मा शिव आदि, यहां तक कि उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी, ज्ञान के मूर्ति में अवतार, वो गोपियों की चरण रज की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। आसा महो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौ शधीनाम। प्रार्थना करते हैं कि प्रभो इस ब्रज भूमि में आप हमको कोई लता पता बना दो, घास फूस बना दो, कोई वृक्ष बना दो, जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण रज हमारे मस्तक के ऊपर पड़े। ये ब्रज गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है। या दुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवी सुतवीर प्रज्ञाम। जिन ब्रज गोपियों ने इन कृष्ण की चरण प्राप्ति के लिए लौकिक वैदिक समस्त प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ दिया, बेड़ियों को एक तिनके की तरह से तोड़ दिया और उन मुकुंद भगवान के चरणार बिंदों को प्राप्त कर लिया, जिनकी प्राप्ति के लिए श्रुतियां आज तक भी खोज में रहती हैं और नेति नेति कहकर के न इति न इति इतना ही नहीं है कहकर के पुकारती रहती हैं, उनको भी ये चरण रज नहीं मिल पाई। उन ब्रज गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया और अपने प्रेम के पाश में ऐसा बांध लिया कि ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। एक थोड़ी सी छाछ के पीछे कृष्ण उनके नचाए से नाचते हैं, उनके इशारे से नाचते हैं, उनकी दास्ता करते हैं। ये वो ब्रज भूमि है, ये वो ब्रज गोपियां हैं। ब्रजवासियों का जो प्यार है, जो संबंध है, वो आत्मीयता का संबंध है। इसको और कोई पा नहीं सकता है। जितना अपने हृदय में प्यार होगा, परिवारी जनों के प्रति जो ममता रहती है, ये ब्रजवासियों के अंदर है। उनके इस प्यार को देख करके ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी मात खा के बैठ जाते हैं, अरे ब्रह्मा जी को मोह हो गया। क्यों हो गया ब्रह्मा जी को मोह? भगवान की लीला, उन्होंने मिट्टी खा रहे थे और ग्वाल बालों ने, बड़े भैया बलदाऊ ने शिकायत कर दिया, लाला ने मिट्टी खाई है, बंद कर दिया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने क्या लीला की? इनकी लीलाओं को देख के ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह कैसे हुआ? अच्छा, अब थोड़ा सा मोह ऐसे हुआ, एक छोटी सी कथा सुना देते हैं, उसके बाद में संक्षिप्त वो कर देंगे। ये ब्रज लीला है थोड़ी सी। मोह ये हुआ जब इन्होंने पूतना को और बकासुर को मार दिया। पूतना, बकासुर और अघासुर तीनों बहन भाई थे। अघासुर ने सोचा कि मैं देखता हूं कृष्ण कैसा बलि है, मेरे बहन भाई को इसने मार दिया है। तो वो एक अजगर का रूप बना के बैठ गया और ग्वाल बाल तो बेचारे भोले भाले थे, सोच के ये भी कोई वृंदावन की शोभा है, क्योंकि उसके डाढ़ दांत ऐसे दिखाई दे रहे जैसे कोई पहाड़ की शिखर, और उनका वो दिखाई दे रहा था जीव ऐसे जैसे कोई सड़क जा रही हो। और ग्वाल बाल बेचारे अपने बछड़ों को ले गए। श्री कृष्ण भी पहुंच गए वहां पर, उनको आया देख करके उसने अपना मुंह बंद कर लिया और लुट लुटी लगाने लगा। सब ग्वाल बाल लुढ़क पुढ़क हो गए, समाप्त हो गए, अचेत हो गए। अब उसके बाद में श्री कृष्ण ने उनको बंद कर दिया, यानी जैसे ही वो आए उनके स्पर्श से सब ग्वाल बाल तो युत हो गए और वो एकदम दिवंगत हो गया। और फिर उसके बाद में जब आए हैं तो ये लीला उन्होंने ग्वाल बालों ने एक वर्ष के बाद में सुनाई। उस समय जब ये निकल के आए थे तो सब ग्वाल बाल आपस में भोजन करने के लिए बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में से निकाल के खा रहे हैं। ग्वाल बालों ने देखा कि भोजन कर रहे हैं, अरे कृष्ण ये तो भाई बड़ी स्वाद पकौड़ी है, और कृष्ण मुंह में से निकाल के पकौड़ी को खा रहे हैं। ब्रह्मा जी देखने लगे कैसा भगवान है, वेद में लिखा है न दद्याद कश्चित उच्छिष्टम, किसी को झूठा देना नहीं चाहिए, किसी का झूठा खाना नहीं चाहिए। झूठा तो क्या, ये तो मुंह में से उगाल निकाल के खा रहा है, वारे भगवान। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, बछड़ों को और ग्वाल बालों को लेके चले गए। अब श्री कृष्ण ने उतने ही रूप बना लिए जितने ग्वाल बाल बछड़े थे। अब एक वर्ष व्यतीत हो गया, लौट के आए देखा कि अब देखिए क्या हालचाल है ब्रज में, तो वहां तो उतने ही ग्वाल बाल उतने ही बछड़े दिखाई दिए। अब ये समझ गए, विचार आया कि भाई हम तो ऊपर छोड़े आए थे, ऊपर गए तो वैसे ही मिले इनको, और माथा ठोकने लगे। फिर नीचे आए पहचान मिलाने के लिए, तो इतने में श्री कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से बोले देखो हमारे हुक्म के बिना यहां कोई आना नहीं चाहिए, तमाम ब्रह्मा नकली रूप बना के डोलते रहते हैं। अब जैसे ही ये पहुंचे ब्रह्मा जी, द्वारपाल तो उनकी जय जयकार करते थे, लेकिन वहां पर जब पहुंचे तो उनको धक्का दिया, बोले चलो चलो तुम्हारे जैसे तमाम नकली ब्रह्मा डोलते हैं, सरकार का हुक्म नहीं है अंदर जाने को। ब्रह्मा जी समझ गए हमारे लोक में प्रभु के अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं है। अब उन्होंने आकर के देखा तो क्या देख रहे हैं कि जितने भी ग्वाल बाले बछड़े हैं तावत सर्वे वत्सपाला, सब जो है चतुर रूप में दिखाई दे रहे हैं, अनेकों ब्रह्मा शिव उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐश्वर्य नहीं देख सके, आंखें बंद हो गई, फिर नेत्र खोले तो क्या देख रहे हैं, वही कृष्ण दाल भात का कौर लिए हुए हैं और एक हाथ में इधर वेणु को और लकुट को फेंट में कसे हुए हैं। बड़ा सुंदर रूप, स्तुति की, बहुत स्तुति की, अपने को बहुत धिक्कारा। और अंत में उन्होंने उन ब्रजवासियों की महिमा गाई, उनका यश वर्णन किया, अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे धन्य तो ये ब्रजवासी हैं, इनके सौभाग्य को देखो, हम ब्रह्मा भी बन गए तो क्या हुआ, इंद्र भी बन गए तो क्या हुआ, इन ब्रजवासियों का सौभाग्य देखो जो कृष्ण को अपने कंधे पे बैठाल के ले जा रहे हैं, और ये ब्रजवासी कृष्ण के कंधे पर चढ़ के जा रहे हैं। सौभाग्य तो इनका है जो परब्रह्म परमेश्वर जो सुप्रीम गॉड हेड है वो आज इनके मित्र बने हुए हैं। जनमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो पूर्ण ब्रह्म है सनातन है। तो ये भाई ब्रज की महिमा है, जो ब्रज में ब्रजवासियों में अंतर समझते हैं वो ब्रज रस को नहीं जान सकते हैं। हम ब्रज रस की प्राप्ति करें, राधानाथ महाराज ने एक बहुत सुंदर अभियान चलाया है, वो चल रहा है, चलता रहेगा। और बड़ी सुंदर बात है कि आप आई कैम्प के बहाने से ब्रज में जो बरसाने में जो सेवा के लिए जाते हैं, ये भी उनकी कृपा प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। अधिक से अधिक भक्तों को सेवा के भाव से इस बहाने से वहां पर जाना चाहिए, जिससे कृष्ण की कृपा, ब्रज की कृपा आपको प्राप्त हो सके, ब्रजवासियों की सेवा का आपको अवसर प्राप्त हो सके। जय श्री राधे। बहुत समय हो गया है और आप लोग परेशान भी हो रहे हैं, परेशान तो नहीं लेकिन समय के कारण से और भी बहुत से कार्यक्रम हैं। आप लोग भक्त हैं, कृष्ण चरित सुनने में तो आनंद आता ही है, इसलिए परेशान तो कोई नहीं होंगे, लेकिन आगे के कार्यक्रमों में विघ्न न पड़े, इसलिए जय श्री राधे।
We've been hearing from these illustrious Vaishnavas the glories of the holy name and the glories of the holy Dham and the glories of holy relationships. Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this world to experience for himself the sweet essence of Braj Bhakti and to share that experience with the world. When Krishna wanted to experience the love of Srimati Radharani, going into her heart to understand the nature of her love, the wonderful qualities in him which evokes such love, and to taste the happiness that she feels because of his love, Sri Chaitanya Mahaprabhu discovered that the essence of that love, which he wanted to taste and to distribute, was all contained in the Hare Krishna mantra. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came to teach Braj Bhakti through the process of the chanting of the name. And in addition, not addition, but a very essential aspect, an inseparable aspect of the chanting holy name, is service to the devotees. We hear how after taking initiation from Ishwarapuri in Gaya, Sri Chaitanya, in those days Nimai Pandit, previously the most arrogant personality from a superficial perspective, was thereafter totally immersed in serving his servants. That is his utmost pleasure and desire. And that is also his utmost gift to us, the privilege which the Supreme Lord himself considers most precious, service to the devotees, without which our chanting of the holy name is incomplete. When Krishna had revealed his glory in lifting and holding Govardhan Hill, the cowherd men were quite perplexed that this little child they loved so dearly had revealed the potency of Godhead before their eyes. And they were discussing with Nanda Maharaj, how is it that your little child, you know, when he's just an infant, the powerful Rakshasi Putana came to take away his life, but he took away her life. And all these different demons, Bakashura, Vatsashura, Palambashura, they kept coming. And your child was repeatedly defeating them. And now this Leela of lifting Govardhan Hill was revealed for everyone to see. And then the cowherd men expressed to Nanda Maharaj a very perplexing phenomena they had experienced. they addressed Nanda Maharaj, "Dear Nanda, how is it that we are so spontaneously attracted to your son with more affection than we feel for our own sons? This is not natural." But more perplexing to them was, "How is it that your child feels so much love for us, just like he does for you, Nanda Maharaj? How is it that Krishna feels so much attraction to us? We're not even his parents, we're just ordinary cowherdmen. How is it that Krishna is so spontaneously attracted to us?" And Gargamuni, Nanda Maharaj would just, times like this, repeat the words of Gargamuni. But what is attractive to Krishna is when devotees come together in loving relationships, the essence of which is service attitude. The cowherd men were coming together to discuss the wonder of, in the power and sweetness of Krishna. And in discussing Krishna's pastimes in loving relationships, they were overwhelmed by the manner in which Krishna was attracted to them. And this pastime reveals a very essential aspect of Krishna consciousness and Braj Bhakti. Braj is that realm, that topmost realm in the spiritual sky, the most intimate realm of Goloka Vrindavan, where everyone has the purest love for Krishna, and he has such spontaneous love for them. The cowherd men were perplexed by this phenomena, how Krishna was so spontaneously attracted to them. But it was because they were coming together to discuss his wonderful pastimes. So in this world, everyone is seeking loving relationships. But we're always frustrated because relationships with other jiva souls are so limited. And in this world, those relationships are so contaminated. And they're by nature temporary. And to whatever extent we experience pleasure in relationship to anything in this world, we will inevitably experience at least an equal amount of suffering when it's gone, and frustration in the meantime. But when devotees come together in loving relationships based on service to Sri Guru and Sri Gauranga, based on reminding one another of the sweetness and intimacy of Krishna's love, then we actually attract that love. Krishna is the controller and proprietor of everything and everyone. There's nothing of which he is in need. But he's so attracted to the love of the Brijabasis. And he's also perplexed that he can't understand that love himself. After Krishna completed his lila, his Braj lila, he was contemplating, how is it that the Brijabasis love me so much? What is it about me? He could not understand himself, and therefore he had to take the role of a devotee to understand the experience, the sweetness, the love that they feel in discussing him and serving him. So Braj is a place where harmony prevails. And the taste of harmony is sweetness. And the essence of that harmony is congregating to chant the most intimate mantra of the spiritual world, that very mantra by which the gopis worship and attract Krishna. And Sri Chaitanya Mahaprabhu brought that most intimate hymn of the spiritual sky to this mortal world to invite anyone and everyone to enter those sweet and holy portals of Vrindavan. But that harmony, that sweetness, is based on relationships which are centered on service to the servants. So, what is the taste that we experience in serving the servants and discussing Krishna's pastimes and chanting his holy names? That sweetness is due to the fact that these activities attract the all-sweet Krishna. So, after many years, it's such an honor and privilege to be able to experience the sweetness of the loving relationships and the service attitude amongst the devotees who have congregated here to serve Sri Sri Radha Gopinath and to be able to attend your Gaurapurnima festival in the association of my old dear friend and guide, His Holiness Srila Radhanath Swami. And we're especially blessed this Gaurapurnima festival, having the association of these wonderful Brijabasis to remind us of the gift which Sri Chaitanya Mahaprabhu brought to this world. The sincerity, the focus, the enthusiasm of the devotees in this temple is unrivaled in all the world. And I thank you all very deeply from the core of my heart for allowing us to experience your association in coming together to worship the most important day in all of history, according to Sri Vrindavan Das Thakur, Gaurapurnima. And by maintaining your enthusiasm and your service attitude, you will be continue offering such a precious service to Srila Prabhupada by attracting the world to his movement. There are many temples in the world where devotees are struggling because they do not have the quality and purity of loving relationships as found here. And if we're not satisfied in our Krishna consciousness, we will not be very effective in our preaching. The essence of our satisfaction is the nature of our relationships. And by following this principle, Sri Chaitanya Mahaprabhu personified and taught, chanting the holy name and service to devotees, we can find that taste for which we're always anxious. And when devotees have an experience and an environment of such sweet loving relationships, they'll be very satisfied, and their preaching will be fortified, and they will be able to attract others to experience that taste. Srila Prabhupada was such a compassionate soul, willing to sacrifice everything to uplift a suffering world. His Holiness Srila Radhakrishna Swami Maharaj is following in his footsteps by sacrificing so much for the welfare of others, revealing an unparalleled ability to maintain such a vast expanse of loving relationship and service to others. And that has given this temple an atmosphere which attracts Krishna. The whole process of Krishna consciousness is to attract Krishna again to take up residence in our heart. And the process begins with chanting the holy name. It begins with accepting the order of Sri Guru and chanting the holy name according to his instructions. And when that holy name takes root within our hearts, then gradually the pastimes of the Lord unfold in our meditation. And if we protect that bhakti lata bija with the fence of devotee relationships and devotee association, nurture that bhakti lata bija by the nourishment it requires, the chanting of the holy name and the service to devotees, carefully guarding against offenses which would uproot that bhakti lata bija, then gradually it grows and grows and grows, penetrating the coverings of this universe, crossing the Viraja and Brahma Jyoti, seeking shelter in Goloka Vrindavan at the lotus feet of Krishna. So we should always remember that the holy name is inseparable from service to devotees. And when devotees come together in a harmonious spirit of service to one another and the chanting of the holy name, that attracts Krishna. And that is what creates the sweetness of Krishna consciousness. So I deeply thank you all for so sincerely and so humbly practicing this process and allowing us the honor and privilege of your association for this Gaur Purnim festival. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much.
महाराज जी कह रहे हैं 4 o'clock। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। लेक्चर तो टाइम से समाप्त हो जाता है पर संगीत में समय की पाबंदी हो जाती है तो फिर संगीत में मन ही नहीं लगता। इसलिए मैं कोशिश करूंगा 4 बजे समाप्त हो जाए। पर महाराज तो हमारे माता पिता हैं, सब कुछ है महाराज, इसलिए क्षमा करेंगे। मुख सूख गया यदि रोते हुए, मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। भवसागर में हम डूब चुके, फिर नाव को नाविक लाया तो क्या। दृग्लोचन बंद हमारे हुए, जैसे उस पिल्ला के लोचन बंद हो गए उसी तरह हमारे भी दृग्लोचन एक दिन बंद हो जाएंगे। दृग्लोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब देखने वाला ही नहीं रहेगा फिर तू मुस्काते रहना, फिर क्या तेरी मुस्कान से हमें लेना देना। दृग्लोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही ना रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। आप सब लोग बोलना, अरे रस के रसिया श्याम, श्याम रस मुझे पिला दे। अरे अपना रंग दिखा दे, ओ रस के रसिया श्याम, श्याम रस मुझे पिला दे। हरे अपना रंग दिखा दे, रस के रसिया श्याम, श्याम रस मुझे पिला दे। हरे अपना रंग दिखा दे। अगर पूरा नहीं बोल सको तो आधा बोलो। हरे अपना रंग दिखा दे, बोलो हरे। हाय हाय अरे अपना रंग दिखा दे, हाय रे। और श्याम हाय रे अपना रंग दिखा दे हाय ये रस प्याला महादेव पिया ये रस प्याला महादेव पिया भया बावरा नंगा फिरिया भया बावरा नंगा फिरिया भया महादेव जी नंगे क्यों रहते हैं को पागल हो गए क्या धतूरा क्यों खाते हैं दुनिया में अच्छी चीजों की कमी है क्या काजू किशमिश नहीं मिलते उनको जो धतूरा खाते हैं ये बड़ा गूढ़ रहस्य है इसलिए महादेव जी के लिए कहा है वैष्णवा नाम यथा शंभु जितने भी वैष्णव है सृष्टि के अंदर सबसे प्रथम वैष्णव भगवान शंकर हैं क्योंकि जितनी भी चीजें थी सृष्टि की उन्होंने सब भगवान को अर्पित कर दी जितनी भी अच्छी वस्तुएं थी जितने भी अच्छे वस्त्र थे पहनने योग्य जितने भी अच्छे भोग लगाने योग्य भोग थे वो सब प्रभु को अर्पित कर दिया अपने स्वामी को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया और जो एक बार अर्पित कर दिया दोबारा उसका भोग नहीं किया इसलिए उनके लिए कुछ बचा नहीं इसलिए धतूरा खाते हैं इसलिए नंगे घूमते हैं भैया बावरा नंगा फिरिया भैया अरे भैया बावरा नंगा फिरिया वो ही प्याला प्रेम नाम का हमें पिला दे हाय रे अपना रंग दिखा दे वो ही प्याला प्रेम नाम का हमें पिला दे हाय रे अपना रंग दिखा दे वो ही प्याला प्रेम नाम का हमें पिला दे हाय रे अपना रंग दिखा दे हाय रे हाय हाय अरे अपना रंग दिखा दे ये रस प्याला गोपी पी गई ये रस प्याला गोपी पी गई ये रस और लाज छोड़कर तुझसे मिल गई लाज वो ही प्याला अरे रास रंग में नाच रही वो मुझे दिखा दे रास रंग में नाच रही वो मुझे दिखा दे अरे अपना रंग दिखा दे अरे देखो संसार के जितने भक्त हुए हैं इस सृष्टि में चारों युगों में उन सब में सर्वोपरि हैं गोपियां नारद जी ने जब भक्ति सूत्र बनाया तो उन्होंने देखा सबसे पहले किस भक्त को लिया जाए तब उन्होंने सूत्र बनाया यथा ब्रज गोपिका नाम ब्रज गोपियों जैसा आज तक कोई भक्त नहीं हुआ जितने भी भक्त हुए सबसे ऊपर गोपियां हैं सूरदास जी ने लिखा है गोपी प्रेम की ध्वजा झंडा होता है ना झंडा वो प्रेम का झंडा है गोपियां हम सब लोग झंडे के नीचे हैं झंडा सबसे ऊंचा होता है और कबीरदास जी कहते हैं एक बार क्या हुआ, कबीरदास जी गंगा के किनारे काशी में श्री राम 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 रटते हुए विचरण कर रहे थे और मन ऐसा एकाग्र हुआ भगवान के रूप में कि भगवान को आना पड़ा। आगे आगे कबीरदास जी चल रहे हैं, वो राम राम रट रहे हैं और पीछे पीछे कबीरदास वो भगवान चल रहे हैं, राम जी वो कबीर कबीर रट रहे हैं। जैसे ये था माम प्रपद्यन्ते, आप जिस भाव से भगवान को भजोगे उसी भाव से भगवान भी भजन करेंगे। भगवान भक्तों का भजन करते हैं, भक्त भगवान का भजन करते हैं। कबीरदास जी राम राम कर रहे हैं और राम कबीर कबीर कर रहे हैं, तो कबीरदास जी ने पीछे मुड़ के देखा कि ये कौन मूर्ख है, अरे भगवान का नाम लेना चाहिए, मेरा नाम जपने से क्या होगा। पीछे देखा तो भगवान सरकार राघवेंद्र सरकार तो चरणों में पड़ गए और फिर बोले, मन ऐसा निर्मल हुआ जैसे यमुना नीर और पीछे पीछे हरी फिरे कहें कबीर कबीर। मन ऐसा निर्मल हुआ, ऐसा निर्मल मन हो गया कबीरदास जी का जैसे यमुना नीर और पीछे पीछे प्रभु फिरे और कहें कबीर कबीर। जब कबीरदास जी ने पीछे मुड़ के देखा तो कबीरदास जी ने कहा, अरे कबीर कबीर कहने से क्या हुआ, क्या होगा, कबीरा कबीरा क्या कहे तू जा यमुना के तीर, एक कबीर के एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। करोड़ों कबीर एक गोपी के प्रेम की समता नहीं कर सकते, ये कबीरदास जी कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं अपने श्रीमुख से। इसलिए ये रस प्याला गोपी पी गई और लाज छोड़ कर तुझसे मिल गई, वो ही प्याला रास रंग में नाच रही वो हमें दिखा दे, अरे अपना रंग दिखा दे। और रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, अरे अपना रंग दिखा दे। भजन तो पूरा होने वाला है पर इसमें एक छोटी सी कथा है, वो कहे बिना इस भजन का आनंद आएगा नहीं पूरा। ये रस प्याला ताज ने पिया, ये रस किसने पिया, ताज, ताज बीबी श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी उपासिका हुई है। ताज बीबी आपको शब्द से पता लगता होगा कि जाति से मुसलमान थी, श्री कृष्ण के बहुत मुसलमान भक्त हुए हैं, जैसे रहीमदास जी, रस खान जी, ताज बीबी, अली खान पठान, नजीर, बहुत हुए हैं। वो सब कृष्ण उपासक थे। काले खां करौली में मदन मोहन जी के बड़े बहुत बड़े भक्त हुए काले खां, जिनको मदन मोहन जी ने दर्शन दिया है। इसी तरह ताज बीवी भी श्री कृष्ण की भक्त हुई है। बहुत ज्यादा कथा उनके बारे में नहीं बताएंगे, उन्होंने जो लिखा है वो बता रहे हैं हम आपको। वो जब पहले पहले ब्रज में आई पहली बार और जतिपुरा में श्री कृष्ण के दर्शन किए श्रीनाथ जी के, उस समय श्रीनाथ जी जतिपुरा में रहते थे। ताज बीबी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शिष्या है, बल्लभ कुल की वैष्णव है। जब पहली बार आई और उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, उसमें बड़ी लंबी कथा है। उससे पहले इनको कृष्ण प्रेम नहीं था। पहली पहली बार जब दर्शन किए तो इनकी चित्त की क्या हालत हुई, ये उनके विचार हैं, स्वयं उन्होंने लिखा है। ताज बीबी कहती हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। दस्त मीन्स हाथ, उर्दू में कहते हैं दस्त। मैं तेरे हाथों बिक चुकी हूं, अब जितनी भी बदनामी होगी सब सहूंगी। दस्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज वो भुलानी, तजे कलमा पुराण तेरे गुणन गहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। क्या समझे? समझ गए? हो तो मुगलानी, अरे हो तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। और क्या क्या करूंगी तेरे लिए सुनो। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीम रहमान छोड़े, पीर और सैयद की चर्चा ना चलाऊंगी, सूत ना छोड़ पर घाघरा घुमेरदार, फरिया फार शीस पे चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत शहजादी ताज माथे से उतार धरू, और जो ये ताज है माथे पे इसको भी छोड़ दूंगी, और वृंदावन छोड़ अब दिल्ली ना जाऊंगी, वृंदावन छोड़ अब दिल्ली ना जाऊंगी, दासी बनूंगी महारानी श्री राधा जू की। तुर्कनी नसाए नाम गोपिका धराऊंगी, अरे तुर्कनी नसाए नाम गोपिका धराऊंगी। और सुनिए, पहनूंगी ना ताज मैं, ये बादशाह अकबर के परिवार से थी। पहनूंगी ना ताज में ना पढ़ूंगी नमाज कभी, और रोजाना रहूंगी नेम व्रत को लहूंगी मैं, रोजा नहीं रखूंगी आज से व्रत क्या करूंगी व्रत, अल्लाह बिस्मिल्लाह का ना हल्ला मुझे अच्छा लगे, त्याग के रहीम अब राम ही कहूंगी मैं, खाऊ ना कबाब की कलिया कड़ाड कभी, गंदा खाना पीना नहीं खाऊंगी, क्या खाऊंगी प्रसाद बात सबकी सहूंगी मैं, कहे मुगलानी सदा तेरे संग जानी, भई दंपति दीवानी हिंदुवानी हो रहूंगी मैं, दंपति दीवानी मैं युगल सरकार की दीवानी हूँ, आज से हिंदुवानी हो रहूंगी, ज्यादा नहीं बताएंगे, 4:05 हो गए ऊपर, रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, हरे अपना रंग दिखा दे, रस के रसिया श्याम श्याम रस मुझे पिला दे, हरे कभी गोकुल में जाओ, गोकुल में, गोकुल रमन रेती में एक तरफ तो रसखान जी की समाधि है और उसी के पास में ताज बीबी की समाधि है, उसी के पास अली खान पठान की समाधि है, ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं, तीनों की समाधि ब्रज में है, अरे अपना रंग दिखा दे, आए अपना रंग दिखा दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।